नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार 3 बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने लगभग 45 मिनट तक गहन मंथन किया, जिसके बाद ये बात सामने निकल कर आई। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। नव नियुक्त आयुक्तों के औपचारिक स्वागत के बाद शुक्रवार को पूर्ण आयोग यानी फुल कमीशन की मीटिंग शुरू हुई थी। ये बैठक लगभग 45 मिनट तक चली थी। पिछले लोकसभा की बात करें तो उस दौरान लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। परिणाम 23 मई को आए थे। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स थे, जिनमें से 67% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे खास बात यह रही कि इस लिस्ट में देश के 2 सबसे बड़ी कंपनियां अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम नहीं दिखे। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को हलफनामा दिया था। इस हलफनामे में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और चंदा पाने वाली राजनीतिक पार्टियों के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए डेटा से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कई बड़ी कंपनियों के नाम का खुलासा हुआ है। इनमें भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, लक्ष्मी निवास मित्तल, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, टॉरेंट पावर, अपोलो टायर्स आदि नाम शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं उन 10 कंपनियों के नाम जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा चंदा दिया। सबसे पहले नाम आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, 1208 करोड़ रुपये। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, 821 करोड़ रुपये। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, 410 करोड़ रुपये। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, 377 करोड़ रुपये। वेदांता लिमिटेड, 375 करोड़ रुपये। देश का आईटी हब पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहा है। पैसा खर्च कर बड़ी इमारतें तो बना ली हैं, आलीशान बाथरूमों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन उन शावरों में पानी आना ही बंद हो चुका है। हालात ऐसे चल रहे हैं कि लोग ऑफिस तक जाने की स्थिति में नहीं है। वर्क फ्रॉम होम की मांग की जा रही है। टैंकरों के जरिए पानी को पहुंचाया जा रहा है। पानी की बर्बादी पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी ठोका जा रहा है। ये सब कुछ कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। कम होती बारिश और भूजल के स्तर का लगातार गिरना बेंगलुरु की हालात के लिए जिम्मेदार है। बेंगलुरु को 145 करोड़ पानी कावेरी नदी से मिलता है। 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल से आता है। अब ये दोनों ही स्रोत सूख रहे हैं और आईटी हब में हाहाकार मच चुका है। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो भी बेंगलुरु में आए इस महासंकट की तस्दीक करता है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक का ये शहर ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। अब बेंगलुरु में इस समय जो हो रहा है वो सिर्फ एक झांकी मात्र है, उससे ज़्यादा भयावह हालत तो देश के दूसरे राज्यों में हो सकती है। कई रिपोर्ट्स, कई स्टडी की जा चुकी हैं, सभी का संकेत साफ है। भारत जल संकट की तरफ तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। पानी की कमी से लेकर कई जगहों पर पानी की एक बूंद के लिए तरसने जैसे हालात बन सकते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन जैसी प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, समय के साथ भारत एक खतरनाक दलदल की ओर अग्रसर है। ये चिंता की बात है कि भारत में पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन उस अनुपात में जब पानी की बात की जाए तो सिर्फ 4% के करीब बैठता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में दुनिया का सिर्फ 4% शुद्ध जल का स्रोत है। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि हालात कितने विस्फोटक हैं और डिमांड की तुलना में सप्लाई कम चल रही है। इसी चिंता में अगर नीति आयोग की CWMI रिपोर्ट जोड़ दी जाए तो जल संकट और ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 2 लाख लोगों की मौत होती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें साफ पानी नसीब नहीं होता। इसी तरह 75% घर इस देश में ऐसे चल रहे हैं जहां आज भी पीने का पानी नहीं आता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।